Hare वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रवर्जतं मनुपेत्यपेत्य कृत्यं दायपायनो विरहकातरः आजुहा पुत्रेति तन्मयातया तरो आबिमेद तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसार एकम् आजात्मदीपं मत्ते सतां तमो अंगं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सुनम् उपयामि गुरु मुनिमानम् नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु दित्यां भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरा भवति नैष्ठके। परब्रह्मं श्रीमद्भागवतं महापुराणं परमहंस संहिता वैष्णव संतों के परम धन परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भगवान जो कि आनंद कंड वृंदावन चंद्र जी के युगल चरणों में ध्यान लगाते हुए महाराज परीक्षित को उन प्रभु ठाकुर जी या भगवान के और उनके भक्तों के दिव्य लीला एवं चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के स्कंद नौ के 18वें अध्याय के 23वें नंबर श्लोक की ओर जाते हैं जहां पर वर्णन आता है सुंदर श्लोक का महाराज जी के द्वारा। ताइए इस श्लोक के शब्दों के ऊपर नजर डालते हुए श्लोक के एक एक शब्दों का मैं वर्णन उच्चारण करूंगा, आप सब मेरे बाद एक साथ उच्चारण कीजिए। यायाति अनादि प्रेतम् दैव उपहृतम् आत्मनः मनः तु तद्गतं बुद्धवा प्रतिजाग्रह तत्वाच याया तेरा नदे प्रेतं याया तेरा नदे प्रेतं देवो परितमात्मन देवो परितमात्मन मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रातिजाग्रह तद्वाचः प्रातिजाग्रह तद्वाचः प्रातिजाग्रह तद्वाचः बोलिए वैष्णवी माता जी श्लोक में आए शब्द आप सब कृपा करके मेरे बात दोहराइए ययाति राजा ययाति अग्नि प्रेतम न चाहते हुए देवो परितम विधाता द्वारा की गई व्यवस्था को आत्मनः निजी हित मनः मन तो फिर भी तद्गतं उस आकृष्ट उससे आकृष्ट होकर बुद्धवा ऐसी बुद्धि द्वारा प्रतिजाग्रह स्वीकार कर लिया तत्वचः देवयानी के शब्द अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि शास्त्रों द्वारा ऐसी विवाह की अनुमति नहीं है अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा किंतु विदाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य यह तात्पर्य बहुत ही सुंदर भाव है प्रभुपाद जी के द्वारा और इस श्लोकों के प्रति और इन श्लोकों के अर्थ बड़े सुंदर रूप में लगते हैं। लगभग एक पेज का तात्पर्य है। बड़ा ध्यान से आप श्रवण कीजिए क्योंकि प्रभुपाद जी के हर एक तात्पर्य जो है वो कहते हैं मेरा सुंदर भाव है ये। वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होनी होती है उनकी कुंडलियां पर उनके माता पिता विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़की में हर प्रकार का मेल बैठता है तो संयोग योतक कहलाता है और विवाह हो जाता है। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व भी यह पद्धति हिंदू समाज में प्रचलित थी। कोई लड़का चाहे कितना धनवान क्यों न हो या कोई लड़की चाहे कितनी रूपवती क्यों न हो, जिस ज्योतिष मेल क्षमा करें इस ज्योतिष मेल के बिना विवाह नहीं हो सकता। मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में किसी एक में होता है। यह है देवगण, मनुष्यगण तथा राक्षस गण। ये 3 मनुष्यों का अलग अलग है। एक है देवगण, फिर मनुष्य, फिर राक्षस। विश्व के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस हैं और मानव समाज में भी कुछ लोग देवता वो के समान होते हैं तो कुछ राक्षस जैसे हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति गुण में विरोध होता तो ऐसा विवाह नहीं होता था। ऐसी प्रकार प्रतिलोम तथा अनुलोम की भी गणनाएं थी। मूल भाव यह था कि यदि लड़का तथा लड़की समान स्तर के हैं तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। यानी कि अगर समानता नहीं होगा तो विवाह के बाद केवल दुख ही दुख होगा, क्योंकि अब विवाह में किसी पर क्योंकि अब विवाह में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी विवाह विच्छेद होती है। देखिए प्रभुपाद जी आज के समाज का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आजकल शादियों के बाद लोग खुश क्यों नहीं है तो इसका कारण यहाँ पे बता रहे हैं। निसंदेह अब तो विवाह विच्छेद सामान्य बात बन चुकी है, जबकि प्राचीन काल में विवाह आजीवन चलता था और स्त्री तथा पुरुष में इतना प्रेम होता था कि पति के मर जाने पर पत्नी अपने पति के साथ स्वेच्छा से मर जाती थी या आजीवन स्वामी भक्त विधवा बनी रहती थी। किंतु अब ऐसा संभव नहीं रह गया, क्योंकि मानव समाज पतित होकर पशु समाज की स्थिति को प्राप्त है। बहुत कड़क बता रहे हैं। मानव समाज क्या है? पतित हो चुका है। दाम्पत्य अभिरुचि चिर हेतुः। भागवतम के 12वें स्कंद के 2 अध्याय के 3 श्लोक में अभिरुचि अर्थ यह कि समझौता या स्वीकृति। यदि लड़के तथा लड़की को विवाह स्वीकार हो तो वह विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु वैदिक पद्धति का दृढ़ता से पालन न होने पर विवाह का अंत प्राय विवाह विच्छेद में हो जाता है। भागवत से प्रभुपाद जी कहते हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं 12वें स्कंद से, इस विधि का जब पालन नहीं होता है तो केवल दुख होता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबुदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री श्री राधा गिरिधारी जी जो कि यहाँ पे उपस्थित है, प्रतिमान ही तुम्हें साक्षात राजेंद्र नंदन, जिनकी कृपा अनुकंपा प्राप्त करते हुए उनके छत्र छाया के अंतर्गत उनके चरण कमलों पे सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे भगवान राधा गिरिधारी जी ललिता विशाखा उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जिनके विशाल कमल नेत्र से कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, जिनका कृपा दृष्टि से जैसे तैसे भी यह अदम अवस्था पर होते हुए भी सेवा प्राप्त हो रहा है, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि गोलोक के प्रेम बन हरिनाम संकीर्तन इस धरातल पर लाए हैं, पात्र पात्र ना देखते हुए बिखरा रहे हैं, ऐसे करुणामय महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युगाचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचना रविंद भक्तिवान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह पुनः इस धरातल पर जागृत कराए हैं, जिन्होंने यही विधि को इतना सरल किया है कि एक बच्चा भी इसमें भाग लेता है, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग के माध्यम से ये सुंदर हरि कृष्ण आंदोलन को स्थापित करके सभी को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सबके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब वैष्णव वैष्णवी मुझे ऐसे दिव्य शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं सेवा सुचारू रूप से संपन्न करके गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाऊँ। इसी के साथ हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ये प्रसंग से आप सब अवगत हैं, महाराज ययाति का बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन आ रहा है। तो इससे पहले आप सब भक्तों का दर्शन करके आप सब के साधुता के ऊपर मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है, या मैं बड़ा आभारी हूँ। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन आता है नारद मुनि महाराज कहते हैं, तद्वा गर्ग जनता गिप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु कहते हैं, संबोधित करते हैं, वह साधु जो है भगवान के नाम, उनके श्लोक, उनके गुण रूप लीला का श्रवण करने के लिए कहीं पर भी, कहां पर भी हो बैठ जाएंगे। कहते हैं कि भगवान का नाम अगर अभद दवती अपि, अगर ठीक से उच्चारण भी नहीं किया होगा, पर क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान का लीला है, तो यही भगवान का गुण रूप लीला का वर्णन कहीं पर भी हो साधुगण बैठ जाते हैं। वो देखते नहीं कि इनका तो बोलना बहुत ही सुंदर है, काव्य और गद्य पद्य सबका बहुत सुंदर व्याकरण और काव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा है, तब हम बैठेंगे। नहीं नहीं, कहते हैं कि अबद दवती अपि, अगर ठीक से तो ना बोले तो भी इनको साधो, श्रृणवंती गायंती गृहंती साधवा, सुनते हैं फिर उसे गाते भी हैं और ग्रहण करके करते हैं, क्योंकि साधु है। यशमान प्रति श्लोकम नामान अनंतानि अनंतस्य यशो, ये भगवान का नाम है, अनंत का नाम है, इसलिए इसमें पूरा यश है, तो ये आपका साधुत्व है। क्योंकि वैसे भक्ति मार्ग में आकर हम तो बच्चे हैं, माता पिता जैसे होते हैं, छोटा बच्चा बोल तो नहीं पाता है, कुछ गा भी नहीं सकता है, फिर भी जब वो तुतला तुतला कर कुछ बोलते हैं, मामा पापा या जो भी है, अम्मा अप्पा या जो भी, तो माता पिता को बहुत ही अच्छा लगता है। इसी रूप में हम भक्ति मार्ग में अब आ ही रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, आप सबका साधुत्व है कि आप सब श्रवण कर रहे हैं, श्रृणंती गायंती। मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास, ये मुख का भाग्य है और मन में उल्लास है। दोष समी, आप सब मेरे दोष को क्षमा करें। तो इस प्रकार से ययाति महाराज क्षत्रिय है, पर क्षत्रिय होते हुए भी पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जिसके उल्लेख मुझे आज भी स्मरण है कि परम पूज्य जयपिता का स्वामी महाराज यहीं पे इसी व्यास पूजा में और प्रभुपाद जी राधा गिरदावरी के निकट बैठकर ययाति महाराज का एक सुंदर कथा हम सब भक्तों को श्रवण कराए थे। वे कह रहे थे कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ययाति महाराज इतने इतने सुचारू रूप से अपने राज्य संपन्न किया किए करते थे कि उनके राज्य में युधिष्ठिर महाराज के राज्य जैसे ही राम राज्य से कम नहीं हुआ करता था, कोई दुखी नहीं हुआ करता था। राजा स्वयं भगवान के परम भक्त है और उन्होंने यकीन किया कराया कि मेरा प्रजा भी भगवान का महान भक्त बने, और एक एक प्रजा इतने महान हुए, कहते हैं कि उनका मृत्यु नहीं था। यहां तक कि यमराज के यमलोक में जितने भी यमदूत थे उन सब का सेवा छीन लिया गया था। यमलोक में उनके हाथ में जो त्रिशूल था या शूल था या जो भी था वो सब हाथों में पड़े थे, यहां तक कि यमलोक खाली पड़ गया था, इतना प्रभाव था ययाति महाराज के इस राज्य में। और इंद्र चंद्र वरुण सब देखते रह गए, ययाति महाराज के राज्य से कोई जीवात्मा अपने इच्छा से जब देह को त्यागता है तो स्वर्गलोक से होते हुए आगे अन्य लोकों से होते, ब्रह्मलोक से होते हुए भगवान के धाम जाते थे। इंद्र भयभीत हो गया था और महाराज जी वर्णन कर रहे थे, कहते थे कि यमलोक में जितने भी यमदूत थे और वो सब बैठे बैठे आउट ऑफ सर्विस, यानी कि उनको उनका जो, यहां तक कि पूरे यमपुरी में कुछ कार्य नहीं हुआ करता था, धूल और ये मकोड़े का जाल बन गया था। वो लोग इतने आलस पड़ गए थे कि यमपुरी खाली था, इंद्र भयभीत हो गया। सोचा इस प्रकार से ययाति महाराज अगर यज्ञ तप करता रहेगा, एक दिन वह स्वर्ग के पर अपना राज्य को, अपने शासन को भी लाएगा, उनका प्रभाव इतना था। इंद्र अपना पूरा प्रयास किया, कैसे ययाति महाराज का मैं पतन कराऊं। मुझे स्मरण है जयप्रताप महाराज जी बहुत सुंदर बताते थे, वो कामदेव को भेजते थे और कामदेव जो है अपने साथ बहुत सारे नर्तिका और नर्तन करने वाले अभिनेत्रा अभिनेत्री को लेके जाया करते थे और ययाति महाराज के सभा में आते थे और ययाति महाराज के सभा में नाचते थे। पर ययाति महाराज इतने भगवान के भक्ति में पूरी तरह से रचे पचे थे कि वे जो भी नृत्य देखता था उसमें भगवान का रासलीला दिखा करता था, विचलित नहीं हुआ करते थे। कामदेव थक गया था, यहाँ पे इंद्रदेव का क्रोध और यहाँ पे ययाति महाराज का भक्ति के प्रति निष्ठा। कामदेव फेल हो रहा था, आखिर में कामदेव ने कहा ये मेरे आखिरी चाल रहेगा, तो उन्होंने अपने सबसे सुंदर रूपवती अप्सरा को बुलाया, आज किसी भी हालत में काम हो जाना चाहिए। तो सभा में नृत्य प्रारंभ हुआ और शायद ययाति महाराज कुछ पल के लिए विचलित हुए थे और वो नर्तिका जो है नाचते नाचते धड़ाम करके गिर गई और ययाति महाराज का ध्यान उस नर्तिका के ऊपर गई और कुछ देर के लिए उनके नजर उनके शरीर पर पड़ा और उस पल ययाति महाराज का ध्यान भंग हो गया था और माया पर आकर्षित हो गए थे और तुरंत इंद्र ने कहा पैकअप पैकअप, पूरा टीम पैकअप करके भाग गए। ये था इंद्र का चाल और ययाति महाराज इस चाल के प्रति, उनके चाल के अनुसार उनके चाल में आ गए थे और पूरी तरह से विचलित हो गए। धीरे धीरे उसका प्रभाव यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से ययाति महाराज आज यहाँ पे देवयानी के प्रति आकर्षित होते हैं। आगे जाके वर्णन आ जाता है कि किस प्रकार से विवाह के ऊपर अविवाह करते हैं और किस प्रकार से इनके सौंदर्य से आकर्षित होकर अनेक अनेक सालों तक, भागवतम में वर्णन आता है, अंत में वे इतना आकर्षित हो जाते हैं कि शुक्राचार्य से जब श्रापित हो जाते हैं तो अपने ही जवानी को वापस लाने के लिए अपने चौथे पुत्र पूर्व महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका जवानी दीजिए। और जवानी प्राप्त होने के बाद हजारों लाखों साल के संग के बाद उनको फिर से पुनः साक्षात्कार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा गलती किया। और बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि इस प्रकार का आकर्षण से हम कभी तृप्त नहीं हो सकते, चाहे इस संसार के सुंदर से सुंदर स्त्री हमारे पास आ जाए, चाहे संसार में हमें पूरा यौवन शक्ति प्राप्त हो जाए, कितने भी हम संग कर ले पर कभी भी हमारा मन तृप्त नहीं होगा इस प्रकार के आकर्षण से। इसलिए हे कृष्ण अब इसी वक्त मेरे मन को आपके चरण कमल में लगाइए। बहुत सुंदर साक्षात्कार है ययाति महाराज का, बहुत सुंदर साक्षात्कार। ये प्रसंग अब आगे यही मोड लेगी, बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो यहां पे सच्चाई यह है इस प्रसंग हमें शिक्षा प्रदान करती है कि माया कितना बलवान है। खास करके अगर हम भक्त भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं तो बड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि हम हरे कृष्ण आंदोलन में, प्रभुपाद जी के आंदोलन में थोड़ा सा भी जप तप करते हैं, यदि हम कलयुग के हम जीव हैं फिर भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, थोड़ा सा भी हम प्रसाद पाए, कीर्तन करें, नृत्य करें, जप तप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस संकीर्तन का इतना बल है कि हम स्वर्ग तप जन महारलोक ब्रह्मलोक पार के भगवद्धाम जा सकते हैं। पर इस एक एक भगवान के भक्ति के अंग में इतना शक्ति है कि इंद्र जो है ऊपर से कांपने लग जाता है, एक एक इस्कॉन के भक्त को देखकर वो कांपने लग जाता है, वो सोचते हैं कि क्या ये लोग भक्ति कर करके कहीं कहीं मेरे स्वर्ग के पर अपना साम्राज्य को स्थापित क्यों ना कर ले। इसलिए जब भक्त अग्रसर हो जाते हैं भक्ति मार्ग में तो वो इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं या कोई मोबाइल के माध्यम से भी आ सकते हैं। वो इंद्र कामदेव के द्वारा धनुष छोड़ता है, बोलता है कि ये ब्रह्मचारी अगर तेजस्वी हो जाएगा तो कभी कभी स्वर्ग में आके अपना राज्य को स्थापित कर लेगा, या कभी कभी ब्रह्मचारिणी को सामने लाएगा या वैष्णवी को सामने लाएगा, मन को विचलित कराएगा या किसी और के प्रति विचलित कराने के लिए इंद्र अनेक अनेक चाल खेलेगा। तो चाहिए वैष्णवी को और वैष्णव को बड़े सावधान रहे, क्योंकि इंद्र बहुत सतर्क है, इस्कॉन में जैसे ही आप आ गए तो वो छोड़ेंगे नहीं, धनुष छोड़। जिस प्रकार से ययाति महाराज के भक्ति से वो प्रसन्न नहीं थे, इसी प्रकार से भयभीत थे, इसी प्रकार से भक्त के भक्ति से इंद्र भयभीत रहेगा और वो अपना तैयारी कर रहा है। हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए डबल तैयारी करना है, इसलिए बड़े गंभीरता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना चाहिए, भक्तों का संग गंभीरता से लेना चाहिए। यह प्रसंग से शिक्षा यही प्राप्त होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है भक्तों कि हम लोग भक्ति को प्रारंभ किए हैं और यह भक्ति बड़ा शक्तिशाली है। इंद्र अपना चाल अपना प्लान तो कर ही रहा है, पर हमें सावधान रहना चाहिए, अपने भक्ति का रक्षा करना चाहिए। ययाति महाराज बड़े भाग्यशाली थे कि वे वापस अनेक वर्षों के बाद भक्ति को प्राप्त किए, पर उनके जीवन से हमें शिक्षा लेना चाहिए। हमारा जीवन केवल कुछ पल का है, आज है कल नहीं रहेगा। अगर भाग्यशाली हैं तो 5 साल और 10 साल और 20 साल, पर इसी 20 साल में या 10 साल में 5 साल में हमारे को प्रभुपाद जी ऐसे विधि दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो आइए आज राधा कुंड अविभाव दिवस है, अर्थात श्रीमती राधा रानी का जन्म अष्टमी है आज। आज श्रीमती राधा रानी का राधा अष्टमी है आज कार्तिक महीने में। ये बहुत ही सुंदर है। आज 7 तारीख है, अष्टमी है, ठीक 12 बजे रात को, यानी कि जो बीत गया रात को, आज राधा कुंड में, यानी कि कल रात से राधा कुंड में अगर हम भक्त कभी गए होंगे तो मुझे आज भी स्मरण है कि राधा अष्टमी के दिन कितने कितने भक्त लोग परिक्रमा लगाते हैं, है ना, गरुड़ प्रभु क्या बोले, बोलाष्टमी राधाष्टमी, हाँ दामोदर हरि प्रभु, सब याद है, परिक्रमा करते करते सब राधा कुंड में डुबकी भी लगाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, लाखों की संख्या में ट्रक भर भर के इस्कॉन के भक्त, अन्य संप्रदाय के भक्त सब राधे 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 गूंजते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करते हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीय वातावरण हो जाता है। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक परिक्रमा चलती रहती है। तो ये हो चुका है उनका आविर्भाव, ठीक रात 12 बजे अष्टमी हो चुका है। ये राधा रानी ही है, राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का ही दिव्य शरीर है। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने उपदेशामृत नामक ग्रंथ का रचना किए, उसके पर भावार्थ भी दिए, श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित यह सुंदर उपदेश जो है, बहुत ही सुंदर उपदेश है। सारे शास्त्रों के जितने भी सुंदर उपदेश हैं, शास्त्र देवी देव जितने भी संतों के द्वारा, जितने भी भक्तों के द्वारा, भक्तों में उत्तम से उत्तम भक्तों का जो उपदेश है, सार रूप में हमें प्रस्तुत करते हैं। बहुत सुंदर उपदेश अमृत में 11 श्लोक से, कितने 11 ही है ना, कितने है 11, बहुत ही सुंदर। अमेरिका, यूरोप, पूरे भारत में ये जब उपदेश अमृत के ग्रंथ आए, लगभग 50-60 पेज का, भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए और इस ग्रंथ को पन्ने पन्ने पढ़ने लगे। अंत में निष्कर्ष निकाले, जीवन का परम लक्ष्य यह है कि हम अंत समय या जीवन राधा कुंड में बिताएं। यह उपदेश अमृत का सार है। जीवन के परिपक्व अवस्था में हमें राधा कुंड में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर है वो खाली होने लग गए। जितने भी मंदिर के अध्यक्ष प्रभुपाद जी को लेटर लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी हमारे मंदिर के भक्त लोग आज मंदिर खाली कर करके वृंदावन अमेरिका से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं और राधा कुंड में स्थित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी फिर से एक लेटर लिखते हैं सारे मंदिर के अध्यक्ष। ये तो उपदेश अमृत का आखिरी श्लोक है, अंतिम श्लोक है। पर मेरा आप सब भक्तों के लिए यह आदेश है कि अंतिम श्लोक का पालन जरूर कीजिए, पर उससे पहले श्लोक नंबर 1 पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका पालन कीजिए, उस पर जब परिपक्व होंगे फिर आप 11 की ओर नजर डालिए। वाच वेग मनस क्रोध वेगम, तो ये सब श्लोकों का बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। राधा कुंड वास्तव में बहुत ही पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थान है कि वहां पर जाने पर हमें अनुभव होता है कि कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ पर लीला की है। बहुत ही पवित्र स्थान है। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है, श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक श्रेष्ठ है, वैकुंठ लोक में द्वारका लोक श्रेष्ठ है, द्वारकापुरी से मथुरापुरी श्रेष्ठ है और मथुरापुरी से ब्रज धाम श्रेष्ठ है, ब्रज धाम में वृंदावन श्रेष्ठ है और वृंदावन में गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन में श्रीधाम राधा कुंड श्रेष्ठ है। क्रम से बताते हैं। और यह राधा कुंड इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान का लीला सर्व श्रेष्ठ है। इसके अंदर भगवान के वैकुंठ लीला से मथुरा लीला श्रेष्ठ है। भौतिक जगत में भगवान लीला नहीं करते हैं, वैकुंठ जगत में लीला करते हैं, इसलिए भौतिक जगत से वैकुंठ लीला श्रेष्ठ है। पर वैकुंठ लीला से मथुरा लीला श्रेष्ठ है क्योंकि मथुरा में भगवान का जन्म का लीला है, उनके माता पिता का वर्णन आता है, वैकुंठ में नहीं आता है। पर मथुरा लीला से वृंदावन लीला श्रेष्ठ है क्योंकि वृंदावन में भगवान के बाल लीला का सुंदर वर्णन आता है, माखन चोरी का वर्णन आता है। और ब्रज वृंदावन लीला से गोवर्धन लीला श्रेष्ठ है क्योंकि वो गोप के साथ, गोपियों के साथ जो लीला करते हैं गोवर्धन में, उसका वर्णन आता है। उसमें भी राधा कुंड का लीला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह लीला इस प्रकार से मथुरा लीला, द्वारका लीला से मथुरा लीला श्रेष्ठ है, मथुरा लीला से वृंदावन ब्रज लीला श्रेष्ठ है, ब्रज लीला से वृंदावन लीला श्रेष्ठ है और वृंदावन लीला से रास लीला श्रेष्ठ है, रास लीला से महारास लीला श्रेष्ठ है और महारास लीला से निकुंज लीला जो है श्रेष्ठ है और निकुंज लीला से भी, निकुंज के अंदर जो गुह्य और लीला होते हैं वह और निवृत्त निकुंज लीला श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जो है महारास का वर्णन करते हैं और इससे आगे का लीलाओं का वर्णन नहीं करते हैं। महारास के बाद निकुंज लीला और निकुंज के बाद निवृत्त निकुंज लीला का वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं। वैसे तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद सक्षम है, उनकी अयोग्यता नहीं है, पर वो देखते हैं कि जो संतगण जितने भी ब्रह्मांड के ऋषि मुनिगण थे वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा ब्रज लीला को क्या देवी देवताओं ने देखा, ब्रह्म विमोहित हो गए। अब निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज लीला करे तो सब का फ्यूज आउट हो जाएगा। तो बोला ठीक है, महारास लीला तक परीक्षित महाराज को श्रवण कराएं, और ये जो लीला होते हैं निकुंज लीला, और तो निकुंज और कुंज क्या है इसका थोड़ा सा मैं वर्णन करूंगा। कुंज वो है जो कि ब्रज के सुंदर सुंदर वनों के अंदर पुष्प का एक सुंदर वाटिका बनाया जाता है, भगवान कृष्ण के लिए झूला, राधा रानी के लिए झूला बनाया जाता है, झूला यात्रा हो सकता है, ये सब किया जाता है। कुंज में भी लीला होता है और निकुंज में भी लीला होता है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, तो ये भी होता है। कुंज और निकुंज में फर्क क्या है, अंतर क्या है, इतना ही है कि कुंज भी फूलों का है, निकुंज भी फूलों का है, पर कुंज में जब लीला होता है बाहर से अंदर हम देख सकते हैं, अंदर से बाहर हम देख सकते हैं। जैसे आजकल गाड़ियां दो प्रकार के हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर देखते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसे अंदर से बाहर देख सकते हैं पर बाहर से, तो निकुंज में जब भगवान कृष्ण लीला करते हैं तो भगवान लीला करते हैं और बाहर से कौन कौन क्या क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, पर बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। इतना तक निकुंज होता है कि यहाँ पे पूरे वृक्ष वृक्ष रहेगा, हम यहाँ से चल के भी जाएंगे हमें पता नहीं कि यहीं पे निकुंज है, इतना गुह्य होता है, कैमोफ्लाज होता है, आदमी में बोलता है कैमोफ्लाज करके रख देता है, पता ही नहीं लग गया। भगवान निकुंज में लीला करते हैं और राधा कुंड में बहुत विशेष विशेष लीला करते हैं। इस राधा कुंड का फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आकर ढूंढ कर आते हैं, कहाँ है अरिष्टधाम, कहाँ है अरिष्टधाम, और अरिष्टधाम का ढूंढते ढूंढते देखते हैं तो गन्ने का खेत है। उस गन्ने के खेत में जब गया तो देखा एक छोटा सा पानी का यहाँ पे खड्डा था, उस खड्डे में चैतन्य महाप्रभु लोटपोट होने लगे और कहा यही है राधा कुंड, यही है श्याम कुंड। और रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि यह श्याम कुंड है, यह राधा कुंड है, आप इस श्याम कुंड और राधा कुंड को फिर से एक बहुत ही सुचारू रूप दे देना, ये कोई साधारण स्थान स्थली नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरु का आज्ञा पालन करते भजन में लगे, तो बोला मैं भजन करूं या राधा कुंड को निर्माण करूं, पर उसका भजन इतना तेज था कि यहाँ पे राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप कर रहे हैं, और हरिद्वार से एक सेठ जी भद्रिकाश्रम की ओर जा रहा था, संकल्प लेके गए कि मैं भद्रिकाश्रम में भगवान भद्री नारायण को मैं अपना पेट अर्पण करूंगा, लाखों करोड़ों के सोने चांदी और का सिक्का दूंगा। ये लेके ही जा रहे थे तो थोड़े ही दूर हिमालय पर चढ़ ही रहे थे, तब आकाशवाणी हुई सपने में, आवाज उनको देखा गया कि भगवान बद्रीनारायण आए, कहा कि आप आगे मत छोड़ो, वापस जाओ वृंदावन में, रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक संत है उन्हें सारा धन दे दो, आप उन्हें दोगे तो समझ लेना मैं आपसे प्रसन्न होकर आपके धन को स्वीकार कर लिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी को धन प्राप्त हुआ, उन्होंने कारीगरों को बुलाया और पूरे राधा कुंड और श्याम कुंड को आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा है, और इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसे खोज कर पुनः निकाले, लुप्त हो चुका था। राधा कुंड इतने पवित्र इतने दिव्य है कि कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब गए थे अपने शिष्यों के साथ तो प्रभुपाद जी राधा कुंड के तलटी पर जपा कर रहे थे और उनके जितने भी शिष्यगण आए थे बहुत ही प्रसन्न होंगे और ऐसे उछल लगा रहे थे, फ्लिप लगा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। तो बाबा जी लोग वहां पे थोड़े देखने लगे क्या हो रहा है, तब प्रभुपाद जी सबको बुलाए बोला कि आज से आप सब राधा कुंड में स्नान मत कीजिए, आज से आप लोग राधा कुंड में डुबकी भी मत लगाइए, केवल पानी छिड़क कर आ जाइए। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज, नारद मुनि, ये सब इतने इतने उन्नत कोटि के भक्त हैं, वो राधा कुंड में स्नान नहीं लगाते, वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। ये श्रीमती राधा रानी है स्वयं, पर राधा कुंड की महिमा में वर्णन आता है कि राधा कुंड के जल में कोई डुबकी लगाता है तो वह तुरंत इस जगत के त्रिताप से मुक्त होकर पुनः जन्म ना लेते हुए, किसी माँ के गर्भ में जन्म न लेते हुए दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कुछ भक्त लोग डुबकी लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। अगर हम राधा कुंड जाएँ तो हम थोड़ा सा जल छिड़कें, फिर हम अपने योग्यता को समझें, डुबकी लगाएं नहीं लगाएं, अपने अपने गुरु से संपर्क करके आज्ञा लेकर फिर या तो डुबकी लगाएं या जैसे कहा जाए वैसे करें। पर राधा कुंड में डुबकी लगाएं या उसके पानी को आप छिड़के, वही लाभ आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। राधा कुंडाष्टमी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे। एक आध किसी का प्रश्न है तो ठीक है, बहुत ही संक्षेप में बताया। ये राधा कुंड का बहुत सारे लीलाएं भी हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के और संतों के भी, पर इतना स्मरण रखना कि प्रभुपाद जी को भी राधा कुंड अति प्रिय है। तो उन्होंने एक भक्त को, दो भक्त आए थे, एक का र से नाम शुरू हुआ, दूसरे का स से। तो प्रभुपाद जी को राधा कुंड श्याम कुंड बहुत अच्छा था, तो बोला आपका नाम राधा कुंड और दूसरे को बोला आपका नाम श्याम कुंड। राधा कुंड दास दिए, दूसरे को श्याम कुंड दास दिए। तो हमारा बड़ा सौभाग्य था कि राधा कुंड महाराज का हमें संग मिला था, वो भी बहुत उन्नत कोटि के भक्त थे, या बहुत ही तीव्रता थी उनके अंदर, और इस तीव्रता के साथ वे भक्ति किए। अंत समय में कैंसर वगैरह हुआ, पर उन्होंने भजन को छोड़े नहीं। वृंदावन में उनके शरीर का अंतिम हो गया, लीला हुआ, फिर महानिधि महाराज ने उनके शरीर के राख लिए और उस राख के साथ हम सब वृंदावन के कुंड में डाले। कहते हैं कि राधा कुंड में किसी का राख डालने का अनुमति नहीं है, पर यह राधा कुंड महाराज का राख को स्वयं महानिधि स्वामी महाराज और हम सब भक्त थे तो हमने इसमें विसर्जन किए। ऐसे राख का विसर्जन जब किया जाता है तो वहाँ के संत लोग बहुत ही प्रति बोध कर देते हैं, कहते नहीं करें, नहीं छोड़ते हैं। पर जानते थे राधा कुंड महाराज को, तो उन्होंने दिया। अर्थात राधा कुंड में उनको जैसे नाम था प्रभुपाद जी ने दिया, उस नाम को उन्होंने सार्थक किया और राधा कुंड के लीला में वे प्रविष्ट हो गए हैं। राधा कुंड अष्टमी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे।